ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन।
ओम शांति। राजयोग सर्वोत्तम योग इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य आदरणीय शीलू दीदी जी आए हैं। सभी कर्तव्य बने से हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे कल भी बताया था कि कल वहाँ भट्टी था तो दीदी आ नहीं पाए, तो आज खास यहाँ आपकी क्लास कराने के लिए आए हैं। तो 1960 में दीदी जी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और राजयोग शिविरों के डायरेक्टर भी हैं और टीवी चैनल्स के प्रवक्ता, महासम्मेलन वक्ता और अनुवादक भी हैं। आपने 5 महाद्वीपों में और 70 से अधिक देशों में अपने भ्रमण किया है। आप एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं। तो इस प्रकार से अनेक विशेषताएँ दीदी में हैं। आपकी मधुर वाणी से आप सबको बहुत प्रेरित भी करते हैं। 60 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। 69 में आपने अपने आप को ईश्वरीय सेवाओं के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया। तत्पश्चात प्रारंभ में आपने 70 से 74 तक प्रारंभ में बैंगलोर, काठमांडू उस तरफ आपने सेवाएं दी। तत्पश्चात अफ्रीका और मॉरिशियस के सेवा केंद्रों की आपने स्थापना की 74 से 76 तक। 76 से आप यहाँ ही निवास करते मुख्यालय में और आप डायरेक्टर है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जब शिविर हुआ शिलू दीदी निमित्त बने शिविरों के लिए, इसलिए वो आज डायरेक्टर भी है शिविरों के। और साथ साथ सबसे खुशी की बात ये है कि ब्रह्मा कुमारी का जब चैनल शुरू हुआ, जैसे प्रसारण शुरू हुआ मीडिया के थ्रू, तो सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी शीलो दीदी है जिसके माध्यम से टीवी चैनल्स के द्वारा परमात्मा का संदेश घर घर में पहुंचा। तो सभी कर्तव्य से हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी परमात्मा ने जो विधि बताई राजयोग का, आज हम दीदी जी के द्वारा सुनेंगे। मैं कहना चाहूंगी, दीप की शोभा ज्योति से होती है, राजयोग शिविरों की शोभा शीलू दीदी से होती है, शीलू दीदी से होती है। तो अभी हम सुनेंगे राजयोग सर्वोत्तम योग इस विषय पर आदरणीय शीलू दीदी जी के द्वारा। दो अनाउंसमेंट मैं बता देती हूँ जो कल भी सुबह से बता ही रहे हैं। जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं लिया है, जो शिविर में आए हैं, कल सुबह क्लास के बाद आपको सौगात मिलेगी। बीके टीचर्स और गाइड्स के लिए अलग से सौगात मिलेगी। कहाँ मिलेगी वो कल सुबह आपको बताया जाएगा। अभी हम सुनेंगे राजयोग का आधार एवं विधि इस विषय पर आदरणीय शीलू दीदी जी के द्वारा।
ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ ओम शांति। ओम शांति। अभी जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो है राजयोग, सर्वोत्तम योग। योग तो कई प्रकार के दुनिया में है, पर राजयोग सर्वोत्तम योग कैसे है? अभी अभी ये गीत आपने सुना, गीत के बोल आपने आपके ध्यान पर आए होंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। वास्तव में ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा का मिलन, यही राजयोग है। और इस राजयोग से क्या प्राप्ति होती है? परमानंद का अनुभव कर ले, हो जा मन में मगन। तो जब मन में मगन होंगे परमात्मा की याद में, तो अनुभूति क्या होगी? उस लगन में मगन हो गए तो आत्मा को परमानंद का अनुभव होगा। परंतु ये राजयोग कैसे करें, क्या है इसका आधार और क्या है इसकी विधि, वो आज हम आपको बताएंगे। तो जब योग शब्द कहते हैं तो योग शब्द का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल शब्द है योग, जो संस्कृत से आता है। संस्कृत में युज नाम का शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, युज, और उसी से योग शब्द आया है। किसी भी प्रकार का जोड़ वो योग है। दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं वो सहयोग है। हम कोई बात सोचते हैं और वो बात हो जाती है, वो संयोग है। हम दो चीजें आपस में मिलाते हैं, ये प्रयोग है। तो सहयोग, संयोग, प्रयोग, ये शब्द हम यूज करते रहते हैं। तो योग माना मिलन, योग माना संबंध, जोड़। योग का अपोजिट शब्द है वियोग। और जीवन में योग और वियोग हर पल होते ही रहते हैं। आप जहां से आए वहां से वियोग हुआ, और यहां आए यहां से योग हुआ, फिर यहां से आप वापस जाएंगे अपने स्थान पर तो यहां से वियोग होगा, और जहां जाएंगे वहां से योग होगा। तो जीवन के ये दो पहलू, योग वियोग, तो सदा चलते ही आते हैं। बच्चा पैदा होता है, बहुत छोटा है बच्चा, तो उसका योग अपनी माँ के साथ हो जाता है। माँ से उसको दूध मिलता है, भोजन मिलता है, और माँ को अगर नहीं देखता है तो रोने लगता है। और जैसे माँ सामने आती है, उसको उठा लेती है, तो चुप हो जाता है। तो उसका योग अपनी माँ के साथ है। लेकिन जैसे बड़ा होता है बच्चा, तो वो खिलौनों से खेलता है और तो खिलौनों से योग हो जाता है। थोड़ा खिलौना टूट गया तो रोने लगता है, खिलौना चाहिए। लेकिन थोड़ा और बड़ा होता है, समझदार होने लगता है, तो उसको कई दोस्त मिल जाते हैं, उनके साथ खेलता है, खिलौने छोड़ देता है, तो फिर दोस्तों से योग हो जाता है। फिर माँ कितना भी बुलाएगी, बेटा आओ भोजन करो, ये करो, नहीं मम्मी मैं खेलता हूँ, तो खेलने से योग हो जाता है, सारा दिन खेल में बिजी हो जाता है। फिर दोस्त जो मिलते हैं वो, उनसे योग हो गया, मानो धीरे धीरे योग बदलता जाता है। फिर और बड़ा हुआ तो स्कूल गया, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई से योग हो गया। उनको दोस्त कहेंगे चलो हम लोग खेले, वो बच्चा कहेगा नहीं मुझे पढ़ना है, मेरी एग्जाम है, मेरा टेस्ट है, तो पढ़ाई से योग हो गया। सारा दिन मम्मी डैडी को टीचर की बातें सुनाएगा, मेरे टीचर ने ये कहा, मेरे टीचर ने ये कहा, तो टीचर से योग हो गया। फिर और बड़ा हुआ, नौकरी धंधे में लग गया, तो नौकरी धंधे से योग हो गया। फिर और बड़ा हुआ, शादी हुई, तो सबसे बुद्धि हट कर के पत्नी में लग गई बुद्धि, वो पत्नी से योग हो गया, पति से योग हो गया। फिर बच्चे हुए तो बच्चों से योग हो गया, बीमार हुए तो डॉक्टर से योग हो गया, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। और जब अंतिम घड़ी आती है, मरने का समय आता है, तो किससे योग होता है? उसको सब कहते हैं, अभी भगवान को याद करो, अब भगवान को याद करो। लेकिन क्या अंत के समय उसको भगवान याद आता है? हाय मेरा धन, हाय मेरा मकान, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा दुकान, हाय हाय ही करता रहता है और उसी सोच में मर जाता है। भगवान तो याद आता ही नहीं, क्योंकि मोह में फंसा हुआ था। इसीलिए आवश्यकता है कि जीवन में हम कुछ समय निकाले परमात्मा को याद करने में, ये बहुत जरूरी है, तभी अंत के समय वो हमें सहयोग देगा। लेकिन कैसे करें? केवल हे ईश्वर हे प्रभु कह देने से मन नहीं लगता, कुछ आधार होता है, कुछ विधि होती है। तो राजयोग के लिए हमें पहले ये समझना होता है कि मन हमारा कहाँ जाता है। भगवान ने अर्जुन को भी राजयोग सिखाया और यही कहा कि मन मेरे में लगाओ। तो चीजों का भी योग होता है, चीजों का भी योग होता है, दो वस्तुओं को जोड़ते हैं वो भी योग है। बिजली घर से तार आती है, हमारे घर की तार से उसको जोड़ते हैं, फ्यूज को जोड़ते हैं, तो करंट पास होती है, हमारे घर में बिजली आती है, वो भी एक योग है। बिजली घर से योग हो गया तो बिजली आई, तो ये है स्थूल प्रकार का योग। फिर दूसरा है मानसिक रूप से योग, हम किसी को याद करते हैं और वो व्यक्ति उसी समय पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे क्या योग था मेरा, अभी अभी आपको याद किया और आप आ गए, तो मन ने उसको याद किया और वो व्यक्ति को वो याद पहुंची और वो फोन करेगा या पहुंच जाएगा, और हम कहेंगे अरे अभी अभी मैं आपको याद कर रहा था। तो ये भी एक योग है, मानसिक रूप से योग। हम जिस चीज को याद करते हैं उसका अनुभव होने लगता है। कोई दुखद घटना को याद करेंगे तो दुख का अनुभव होता है, कोई खुशी की बात को याद करेंगे तो खुशी का अनुभव होता है। अब ये सब योग तो कॉमन है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं हर एक व्यक्ति योगी है, हर एक व्यक्ति योगी है। आप अपने आप को योगी समझते हो? जो समझते हम योगी हैं हाथ उठाएं, नहीं धीरे धीरे उठा रहे, सब योगी है बताए ना। लेकिन ये योग परिवर्तनशील है, बदलता रहता है समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार ये योग बदलता रहता है। लेकिन जो सच्चा योग होगा वो हर वक्त ईश्वर के साथ होगा। लेकिन कैसे रहे ईश्वर से योग हो? जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब तो हम यही कहते हैं ना, हे भगवान, दुख में तो उसको याद करते हैं पर सुख में भूल जाते हैं। इसीलिए योग को समझना मुश्किल नहीं है, पर राजयोग का अर्थ क्या है? राज बना राजा, सभी योगों का राजा, अर्थात वो योग सबसे ऊंचे से ऊंचे के साथ। आज आपको परमात्मा का परिचय दिया गया, परमात्मा हम किसको कहेंगे? जो ऊंचे से ऊंचा है भगवान, जिसका कोई माता पिता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई गुरु नहीं, पर वो ही सबका मात पिता शिक्षक गुरु है, उनसे योग, सर्वोत्तम सत्ता से योग, जिससे ऊपर कोई नहीं है। और ये राजयोग की जो विधि है वो भी सबसे ऊंची विधि है, सबसे सरल भी है और सबसे श्रेष्ठ विधि भी है। कोई कठिनाई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि हर बच्चा अपने माता पिता को याद करता है, तो परमात्मा भी हमारे माता पिता है, हम उनको सहज याद कर सकते हैं, क्योंकि संबंध है। जहाँ संबंध होता है वहाँ अपने आप जाता है। लेकिन आज की दुनिया में ईश्वर से हमारा कोई संबंध है इतना समझते नहीं है, भले गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, गाते जरूर हैं, लेकिन वो माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु कैसे हैं ये पता नहीं है। इसलिए उसके लिए ज्ञान भी जरूरी है। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो विधि बहुत सरल है परमात्मा में मन लगाने की। और तीसरी बात, इनसे जो प्राप्ति है वो भी सबसे ऊंची है। मनुष्य तो अलग अलग इच्छाएं रख करके भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बच्चा दे दो, धन दे दो, मकान दिलाओ, नौकरी दो, बहुत कुछ भगवान से मांगते हैं। लेकिन सर्वोच्च प्राप्ति किसको कहेंगे? सर्वोच्च प्राप्ति आत्मा के गुणों की प्राप्ति है। इसीलिए कई लोग क्या कहते हैं, ना भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता हूँ, केवल एक ही चीज मांगता हूँ। और क्या कहता हूँ, भगवान बस मुझे शांति दो। तो शांति तो सारी दुनिया मांगती है भगवान से, क्योंकि है ही अशांत दुनिया इस समय, तो सब शांति मांगते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पर शांति केवल युद्ध न होना ही शांति नहीं है, शांति भी एक मन की स्थिति है जो हमारी सोच से उत्पन्न होती है। अभी बताए ना टेंशन क्यों आता है, तो हमारी सोच से ही शांति है, हमारी सोच से ही अशांति है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर हम ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकती है, क्योंकि आप यही सोचते मैं तो बहुत अशांत हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ। और फिर भगवान से शांति मांगेंगे, अब शांति कोई चीज तो नहीं है ना जो भगवान हमें देगा। कोई भी वैल्यू, कोई भी गुण, ये कोई वस्तु तो नहीं है ना जो हम किसी से लेंगे। कोई दुकान में तो शांति प्रेम खुशी ये मिलेगी नहीं जो खरीद करके हम ले आए, ये तो आत्मा का गुण है। और ये आत्मा का गुण अनुभव कैसे होता है? चिंतन से। इसीलिए एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर हम ये सोचते हैं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, फिर साथ में जोड़ देते हैं मैं उस शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, फिर और जोड़ देते हैं कि मैं आत्मा शांति धाम का वासी हूं, तो जिसका अपना स्वभाव ही शांति है, जिसका पिता शांति का सागर है, जिसका धाम शांति का धाम है, तो वो अशांत तो कभी होना नहीं चाहिए। इसीलिए तीन बार शांति शांति कहते हैं। शांति पाठ जब करते हैं ना, तो लास्ट में ओम शांति शांति शांति। ओम माना वही मैं, अ ओम मैं वो आत्मा, मेरा स्वभाव शांति, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा धाम शांति का धाम। तो शांति कोई मांगने की चीज नहीं है, ये अंदर ही अनुभव करने की एक शक्ति है, हमारी सोच से वो आती है। अगर मैं ये समझती हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर पिता की संतान, शांति धाम का वासी, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अशांत नहीं कर सकेगी। चाहे सब कुछ वो लूट भी ले, कोई सब कुछ हमारा छीन ले, पर मेरी शांति नहीं छीन सकता है, क्योंकि मैंने अंदर में दृढ़ संकल्प किया कि शांति तो मेरी मुझ आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव कैसे कोई छीनेगा, वो तो मेरी निजी चीज है। धन संपत्ति वो सब छीन ले कोई, लेकिन जो आत्मा की चीज है वो कैसे ले सकता है। तो इसीलिए सर्वोच्च प्राप्ति किसको कहेंगे, परमात्मा से वो गुण हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान को याद करिए, प्रभु शांति दो, किसी मनुष्य को नहीं कहते शांति दो, क्योंकि दाता वही है। तो आत्मा का अपना स्वभाव भी शांत स्वरूप है, पिता भी शांति का सागर है, और हमारा घर भी शांति का धाम है। तो वो जैसे हम चिंतन में लाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। तो इसीलिए सर्वोच्च प्राप्ति है गुणों की प्राप्ति, और वो गुण आत्मा में ही निहित है, और वो गुण परमात्मा से हम अनुभव कर सकते हैं, किसी मनुष्य से नहीं। मनुष्य अगर कुछ देंगे तो सब सिर्फ अल्पकाल का, वो भी स्वार्थ वाला। हाँ, कई कहते हैं ना, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मेरे से किसी का प्रेम नहीं है। तो हम कहते हैं प्रेम कोई मांगने की चीज थोड़ी होती है, प्रेम देने की चीज होती है। कहा जाता है ना, ये ढाई अक्षर का शब्द है प्यार, ढाई अक्षर। लेकिन ये ढाई अक्षर के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोथी पढ़त पढ़त पंडित बया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े वो ही पंडित होए। तो ढाई अक्षर प्रेम का कैसे पढ़ेंगे, जब हम ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप, मेरा मूल स्वभाव ही प्रेम है, तो मुझे सबसे प्रेम रखना है, मनुष्यों से भी प्रेम। तो आज पर्यावरण दिवस है, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो प्रकृति से भी प्रेम रखना है, भगवान से तो रखना ही है, लेकिन प्रकृति से भी प्रेम रखना है, पशु पक्षियों से प्रेम रखना है। परंतु ये प्रेम कहीं से लाना नहीं है, ये आत्मा की चीज है। एक किसी छोटे बच्चे को सिखाया नहीं जाता है कि ऐसे हाँ प्रेम करना होता है, वो तुरंत पकड़ लेगा कोई भी चीज को, इतना प्यार करेगा। आजकल तो वो दिखाते हैं वीडियोस में, कैसे बच्चा वो कुत्ते को प्यार करता है, कैसे दूसरे बच्चे को प्यार करता है। ये नेचुरल गुण है आत्मा का, नफरत नेचुरल गुण नहीं है, ईर्ष्या द्वेष ये सब नेचुरल गुण नहीं है, इसमें से तो मन खाता है, लेकिन प्रेम शांति सुख दया ये सब नेचुरल गुण है आत्मा के। सिर्फ इसका चिंतन करके अनुभव करना है। अब वो राजयोग हमें सिखाता है, तो क्यों नहीं मन लगा हमारा परमात्मा में। कई कहते हैं मैं परमात्मा को बहुत याद करता हूँ, पूजा पाठ जप तप बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन ये चंचल मन तो लगता ही नहीं है ईश्वर में, और बातें याद आ जाती है, भगवान में मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता, इसका कुछ कारण होगा ना। कोई भी देहधारी ये नहीं कहेगा कि मेरी माँ में मेरा मन नहीं लगता, मेरे पिता में नहीं लगता, मेरी पत्नी में नहीं लगता, ऐसे कभी नहीं कहा। लेकिन भगवान के लिए शिकायत है कि भगवान में मन नहीं लगता। तो तीन कारण है जिसके कारण मन ईश्वर में नहीं लगता, और राजयोग में उसका निवारण मिलता है। पहला कारण है कि मैं कौन हूँ यही पता नहीं, हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं। तो शरीर का संबंध परमात्मा से नहीं है, शरीर का संबंध प्रकृति से है। इसलिए प्राकृतिक चीजें ही याद आती है, संसार की चीजें याद आती है। तो जब हम अपने आप को पहचानेंगे मैं एक आत्मा हूं, तब मन परमात्मा में लगेगा। इसीलिए जब किसकी मृत्यु होती है तो शरीर तो वही पड़ा है, लेकिन कहेंगे चला गया, भगवान के पास गया। अब कौन गया भगवान के पास? शरीर तो वही है, और वो शरीर तो अग्नि संस्कार करके पांच तत्वों में वापस लेंगे, क्योंकि जो चीज जहां से आती है वही वापस देनी होती है। ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो इसको पंच तत्वों को ही वापस करना है। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहेंगे? वो भगवान के पास गए, और फिर क्या कहेंगे? हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना। ये कभी नहीं कहेंगे शरीर को शांति देना, शरीर तो शांत हो गया, मृत्यु माना ही देह शांत हो गया। जब इसकी मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? इनका देह शांत हो गया। पर आत्मा की शांति के लिए फिर भी कामना करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से आई है। इसीलिए आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है, देह का कनेक्शन प्रकृति के साथ है। तो जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं, तब मन परमात्मा में लगता है। तो अभी आत्मा को समझ लिया आपने सुबह, फिर दूसरा कारण है कि परमात्मा कौन है यही पता नहीं। किसको मैं परमात्मा मानूं? उसमें भी मनुष्य का कितना स्वार्थ रहता है। कुछ कोई चीज की मुझे आवश्यकता है तो कोई कहेगा भाई गायत्री मंत्र पढ़ो तो देखो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी, गायत्री मंत्र पढ़ो। फिर चलो गायत्री मंत्र पढ़ा और इच्छा पूरी हो गई। फिर कोई, फिर दूसरी इच्छा जागृत हो गई तो कोई कहेगा हनुमान चालीसा पढ़ो तो आपकी इच्छा पूरी होगी। चलो वो भी कर लिया, फिर गायत्री मंत्र छोड़ देंगे तो वो चीज वापस चली जाएगी, इसलिए वो भी छोड़ नहीं सकते। फिर हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर कहेंगे ये करो वो करो, ये मंत्र जाप करो वो करो, तो सब करने लग पड़ेंगे। मन तो भटकता ही रहता है, क्योंकि सचमुच ईश्वर है कौन ये तो पता ही नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं अपनी पहचान स्वयं देता हूं। तो अभी परमात्मा ने अपनी पहचान दी है, और अब कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरे साथ योग लगाओ। तो आत्मा जैसे समझ गई मैं एक आत्मा हूं और उस परमात्मा की संतान हूं, तो मन लगने लगता है। लेकिन फिर एक तीसरा विघ्न आता है। कौन सा है वो तीसरा विघ्न? वो है मन इतना मैला है, तो उस मैले मन में परमात्मा की याद टिकेगी नहीं। जैसे दूध को रखने के लिए स्वच्छ बर्तन चाहिए, अगर स्वच्छ बर्तन नहीं है तो दूध डालने से वो दूध मैला हो जाएगा, क्योंकि वो सफेद चीज है दूध। या खटाई वाला बर्तन होगा तो फट जाएगा जैसे ही आग पर रखा। तो कितना साफ करना होता है बर्तन, तब उसमें दूध रखा जाता है। तो परमात्मा की याद भी बहुत शुद्ध स्थिति है, शुद्ध है। तो वो शुद्ध विचार मन में आएंगे तभी तो मन का शुद्धिकरण होगा, और फिर परमात्मा की याद ठहरेगी। तो ये तीन कारण है जिसके लिए कारण मन ईश्वर में नहीं लगता। तो राजयोग इसका निवारण देता है। आत्मा का ज्ञान मिला सुबह, फिर परमात्मा का ज्ञान मिला, और फिर स्वच्छ करने लिए आपको दो और टॉपिक्स मिले। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करो तो मन स्वच्छ होगा, टेंशन फ्री रहो तो मन स्वच्छ होगा, और अब आपको बताएंगे कैसे मन लगाना है। तो राजयोग क्या चीज है, अगर उसका डेफिनेशन ले, परिभाषा ले, तो राजयोग माना स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना। ऐसे नहीं किसी को भी याद कर लो। मान लो आपने हनुमान को याद किया, अब हनुमान तो सर्वोच्च नहीं है ना, भले महाबली है, बहुत कुछ उसमें शक्ति है, लेकिन फिर भी हनुमान के लिए क्या कहेंगे, वो राम का भक्त था और राम से उसने शक्ति ली, जय श्री राम कहा, तब उसको शक्ति का आभास होता था। इसलिए उनके लिए राम उनसे ऊंचे थे, पर फिर राम को भी शक्ति कहाँ से मिली रावण पर जीत पाने के लिए, तो उनको कहा शिव की भक्ति करो, शिव की पूजा करो। तो श्री राम से भी ऊंचा कौन हो गया, वो शिव निराकार। तो अगर हम डायरेक्ट उस शिव निराकार से योग लगाएं, तो ये बीच बीच में जो माध्यम है उनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे होता है ना, बिल्कुल मैन्युफैक्चरर से अगर आप ले लेंगे तो कितना सस्ता पड़ता है, वो मैन्युफैक्चरर ने फिर होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने एजेंट को बेचा, फिर वो रिटेलर के पास आया, तब तक कितना वो कमीशन खा लेते हैं, और रिटेल वाले से आप लेंगे तो महंगा हो जाता है, और मैन्युफैक्चरर से लो तो सस्ता पड़ेगा, उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी। तो डायरेक्ट परमात्मा से अगर हमारा योग है तो शक्ति का संचार बहुत सहज होता है। परंतु कई कहते हैं कि हमको तो उस तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए वाया वाया करना होता है। हम कहते हैं मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है, उसका पिता उसका समझो उसकी माँ या उसका पिता प्रेसिडेंट है। मैं एक प्रेसिडेंट से मिलने गई थी, तो वो राष्ट्रपति थी भारत की, प्रतिभा पाटिल है उस समय, तो हम उनसे मिलने गए थे। तो हमने देखा राष्ट्रपति और उसका जो पोता होगा, वो छोटा पोता था, परिवार साथ में था, वो अंदर सीधा भाग कर आया और दादी जी की गोद में बैठ गया, कोई उसको रोकने वाला नहीं। नहीं तो कितना प्रोटोकॉल होता, राष्ट्रपति से ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं, लेकिन वो दादी ने भी उनको बहुत अपने गोद में बिठा करके उनको प्यार दिया, उनको कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। और हम लोग जाएंगे तो कितना प्रोटोकॉल है, अंत में फिर ADC अगर वो जो कहे उसके बाद ही हम मिल सकते हैं, इतना टाइम ही बैठना, इतने लोग ही जा सकते हैं, पर पोते के लिए अपनी दादी या नानी के लिए कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। तो आत्मा को भी परमात्मा से मिलन के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, कोई वाया वाया की भी जरूरत नहीं है। आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा के साथ, और हर जन्म में हमने उनको याद किया है, हर जन्म में हम उनके आशिक बने हैं, वो सबका माशूक है। इसीलिए जबकि हर जन्म का उनके साथ है संबंध, तो कोई नई बात तो नहीं है। देहधारियों के साथ संबंध तो एक जन्म का होता है, कोई माँ बनी, कोई पिता बना, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, एक जन्म का संबंध है बस। और वो हिसाब किताब अगर पूरा हुआ कर्मों का, तो संबंध भी खत्म। संबंध कोई हर जन्म में थोड़ी चलते हैं, वही नहीं, भले कहते सात जन्म का साथ है, कोई सात जन्म का साथ नहीं होता है। अगर दूसरा जन्म मिला, वो कहाँ गई आत्मा, हम कहाँ, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए परमात्मा के साथ जो आत्मा का संबंध है, वो अनादि और अविनाशी है। तो इसलिए परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचान कर, आत्मा निश्चय कर, उनको याद करना है। अब कैसे याद करेंगे, तो कई प्रकार के लोग अलग अलग मेडिटेशन बताते हैं। कोई कहेगा कि बस अपने मन को शून्य बना दो, ब्लैंक, थॉटलेस। अब बिल्कुल शून्य तो कभी मन हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है। अब मन को आप कितना समय आप दबा के रखेंगे, सप्रेस करके रखेंगे कि मन कुछ भी नहीं सोचे। मन की तुलना एक चंचल बच्चे से करते हैं, चंचल बच्चे को आप बांध के बिठा दो, कुछ नहीं बोलना है, मुंह पर पट्टी लगा दो, सेलो टेप लगा दो कि बोलना नहीं है, हाथ पैर बांध के रखो, लेकिन वो छोटा बच्चा चंचल है, तो वो ऐसे बंधा हुआ रहेगा नहीं, वो तो आप चिल्लाता रहेगा, हाथ पैर घुमाता रहेगा, उसको हम बांध नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया, चंचल बच्चे को छोड़ दिया, तो वो तो नाक में दम कर देगा, परेशान करेगा, माँ उसके पीछे पीछे भागती है कि कहीं कुछ तोड़ ना दे, कुछ गिरा ना दे, कुछ कर ना दे। तो बच्चे को संभालना होता है, इसलिए उसको छोड़ भी नहीं सकती है और उसको बांध के भी नहीं बिठा सकती है। तो माँ अपने चंचल बच्चे को कैसे संभालती है? माताएं, आप कैसे संभालते हो अपने चंचल बच्चे को, क्या करते हो? हाँ, तो जब हम पूछते हैं तो यही जवाब मिलता है, बच्चे को कुछ काम दे देते हैं, करो ये काम करो, हाँ काम करो, बच्चे को दे दिया। अब काम करने लिए दिया तो आजकल ये बड़े क्रिएटिव गेम्स आते हैं, वो गेम दिया उनको, वो खेलेगा, उसको जोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, उसमें इतना बिजी हो जाता है तो चंचलता खत्म। तो मन को भी कुछ काम चाहिए, पर क्या हम काम दें वो है समझ की बात। तो इसीलिए शून्य नहीं हो सकता मन, न हमें शून्य करना है, पर मन को कुछ कार्य देना है। चंचल भले है मन, लेकिन वही तो मन ही है जो परमात्मा में लग सकता है। जब अर्जुन ने भगवान को कहा है, अर्जुन हे भगवान, ये मन तो बहुत चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, ये कैसे लगेगा मन? तो भगवान ने उनको दो कदम बताए, गीता में आते हैं, दो कदम बताए जिन दो कदमों पर चलकर मन को वश में किया जा सकता है। और वो दो कदम कौन से बताए? एक कदम बताया वैराग्य, वैराग्य, और दूसरा कदम बताया अभ्यास। तो जब वैराग्य शब्द सुनते ना लोग तो घबरा जाते, तो समझते हैं वैराग्य माना सबको छोड़ देना। वैराग्य का मतलब सबको छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब है राग रहित रहना, वो अटैचमेंट जो है ना उससे परे रहना। मोह के वश था ना अर्जुन, तो सारी कहानी जो भी गीता की है ये मोह को वश करने की युक्तियां भगवान ने अर्जुन को दी। ये मोह जो विकार है, ये विकार ही परेशान करता है, यही दुश्मन है। मन दुश्मन नहीं है, मन तो हमारा मित्र है, और ये मन ही भगवान में लगाना है। तो इसलिए मन को मन का दमन नहीं करना है, लेकिन मन को सुमन बनाना है। सुमन, सुमन, सुंदर विचार मन में लाने हैं और उन सुंदर विचारों में मग्न होना है। पर कौन से सुंदर विचार लाएं? केवल विचार लाने की बात नहीं है, वो विचार लाएं जिनसे शक्ति मिले, क्योंकि आत्मा को शक्ति चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए सच्चा, आत्मा को आनंद चाहिए। वो आनंद आज दुनिया में इसको वो भौतिक बना दिया, कोई चटपटी चीज खाई तो कह देंगे वाह वाह बड़ा आनंद आ गया आज ये चीज खाकर। अब वो तो जीभ का आनंद हुआ, पर अंदर में जाकर के वो कितना नुकसान करेगा वो तो बाद में पता चलता है ना, बहुत चटपटा खा लिया। तो सच्चा आनंद किस में है? सच्चा आनंद है आत्मा के आत्मा को अनुभव करने, आत्मानंद भी कहते हैं। सच्चा आनंद है सच्चा ईश्वर से प्रेम रखने में, इसलिए प्रेमानंद भी कहते हैं। सच्चितानंद भी कहते हैं, सन्यासी संत महात्माओं के जो नाम होते हैं उनके अंत में आनंद शब्द आता है। सच्चिदानंद, सत्यानंद, विवेकानंद, धर्मानंद, परमानंद, और सबसे ऊंचा आनंद है परमानंद। परमात्मा में मन लगाने का जो आनंद आत्मा को आता है, अब वो कैसे अनुभव हो? तो कई फिर समझते क्या दबाव डालना पड़ता है मन पर, हम कहते दबाव भी नहीं, सहज हो सकता है। संबंध का अगर हमें पता है ना तो मन अपने आप जाता है। फिर कई कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है इसलिए मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूं। हम कहते हैं मन को काम दो ना तो क्यों नहीं कर सकोगे। चंचल तो बच्चा भी होता है, लेकिन समझदारी से बच्चे को कैसे वश में किया जाता है। तो चंचल है इसलिए छोड़ नहीं देना है, और ही परेशान करेगा, मन कहाँ कहाँ भटकेगा। फिर कई कहते हैं इसके लिए आसन लगाना होगा। हम कहते हैं आसन की भी जरूरत नहीं है, एक जगह बैठकर की भी करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते आप कर सकते हो। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और मेडिटेशन करना है, शिव बाबा को याद करना है और आंखें बंद कर दी तो क्या होगा? आसन कुछ नहीं है, गाड़ी चला रहे हो तो आंखें बंद कर दी तो एक्सीडेंट कर दोगे, इसलिए सावधान भी रहना है। तो इसीलिए आसन की बात नहीं है और न आंखें बंद करके करना है उसकी बात है, परंतु मन बुद्धि को रास्ता दिखाना है कहाँ जाए। बुद्धि मन को दिशा दे, बुद्धि मन को दिशा दे, बुद्धि माना समझ, वो मन को दिशा दे कि मन को कहाँ लगाना है। इसीलिए इसमें कई फिर कहते हैं कि इसमें तो एकांत स्थान चाहिए तभी हमारा मन ईश्वर में लगेगा। हम कहते हैं वो भी जरूरत नहीं है, भले आवाज हो कुछ भी हो तो भी आप अपना मन ईश्वर में लगा सकते हो। हाँ होता है ना, बहुत आवाज होता है लेकिन आप किसी की याद में खोए हुए हो तो वो कानों में वो आवाज जाता भी नहीं है। कोई उस समय कोई बात कर रहा है तो वो भी हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि मन तो कहीं और कहीं पहुंच गया है। तो इसीलिए कोई आवाज के कारण मन नहीं लगता, ऐसी बात भी नहीं है। फिर कई कहते हैं आंखें भी बंद करनी है तो कहाँ तक आंखें बंद करेंगे? हम कहते हैं वो भी नहीं करो, उठते बैठते खाते पीते आप हर श्वास में ये कर सकते हो। तो फिर कई कहते हैं कि क्या श्वास पर ध्यान केंद्रित करें? श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, श्वास तो अपना काम करता है, वो तो इनहेल एक्सहेल ये तो सब होता ही रहता है। अब हवा अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, ये तो नॉर्मल है। कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि हम कोई श्वास ले रहे हैं या श्वास छोड़ रहे हैं, तो उनको बैठ के गिनना नहीं है। परंतु किसको याद करना है? परमात्मा को याद करने लिए कोई जाप करने की भी जरूरत नहीं है। कई कहते हैं मैं तो मुझे कहा गया है 10,000 बार जाप करो, एक दिन में 20,000 जाप करो। तो कई कहते हैं मैं तो बोर हो जाता हूँ, उब जाता हूँ। क्यों उब जाते हैं? क्योंकि बोरिंग है ना, एक ही एक शब्द वही वही बार बार बोलते रहो तो बोरिंग लगता है। मन आत्मा के अंदर नवीनता, आत्मा को नवीनता पसंद है, समथिंग न्यू, हर वक्त नवीनता चाहिए। पुराने को छोड़ देंगे तो आत्मा को भी नई सोच हर वक्त चाहिए, वो क्रिएटिविटी चाहिए। तो देखो मन उसमें कितना लग जाएगा, लगन में मग्न हो जाएंगे। अब वो क्रिएटिविटी क्या लाए वो राजयोग हमें सिखाता है। और कई तो यहाँ तक कह देते नहीं नहीं बड़ा मुश्किल है, जब बूढ़े होंगे ना तभी सोचेंगे, रिटायर्ड होंगे ना तभी सोचेंगे। अब रिटायर्ड होने के बाद भी क्या होता है, सारा जीवन तो कुछ किया नहीं, और जो हमने क्रोधवश लोभवश ईर्ष्यावश कामवश अभिमानवश ये सब जो विकृतियां हमने मन में पाल ली, वो रिटायरमेंट के बाद थोड़ी मन ईश्वर में लगेगा, उसी में फंसा रहेगा, उसी में फंसा रहेगा। कोई बहुत गुस्से वाला होता है तो क्या रिटायरमेंट के बाद गुस्सा चला जाता है क्या? और ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि काम नहीं है, खाली मन शैतान का घर, और ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि कुछ काम नहीं है। तो इसीलिए ये सब बचपन से होना चाहिए, अच्छी वैल्यूज बचपन से ही अगर सिखाई जाती है तो फिर बुढ़ापे में होगा। तो कई समय हम जब बूढ़े होंगे ना तभी ये करेंगे, लेकिन ये संस्कार तो पहले से ही चाहिए। इसीलिए राजयोग में हम यही बताते हैं कि जिस समय आपको ये ज्ञान मिले उस समय अपने जीवन में धारण कर लो, कोई समय के लिए इंतजार मत करो। जो कल करना सो आज कर, आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी, फिर करोगे कभी? रास्ते चलते ओम शांति हो गया, पता भी नहीं चलता, एक्सीडेंट हुआ, खत्म। ये थोड़ी बुढ़ापे, बूढ़े लोगों को ही मरना है। आजकल तो जवान और ही जल्दी मरते हैं, बूढ़े तो फिर भी हम उनके वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो देखो, हमें ये मुश्किल है ये समझ करके बैठ नहीं जाना है। तो क्या करना होगा? बहुत सहज है। जैसे मनुष्य बच्चा है तो उसका पिता भी मनुष्य ही है। अब मैं एक आत्मा हूं तो आत्मा का पिता परमात्मा है, तो उसको समझना क्यों मुश्किल होना चाहिए? वो परमात्मा है, ऊंचे से ऊंची आत्मा है। अब उसको अगर याद करना है तो आधार क्या रखना है? कहीं भी हमारा मन जाता है ना, उसका कुछ आधार होता है। ऐसे ही नहीं मन जाता है, दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, हम सबको कहाँ याद करते हैं? पता भी नहीं होता, इतनी न्यूज होती है और हमने अखबार नहीं पढ़ी, न्यूज सुनी नहीं, रेडियो टीवी को देखा नहीं, कुछ भी नहीं पता चला, किसी ने बताया भी नहीं, तो कहीं भूकंप आ गया, हजारों मर गए, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसे ही कहते हैं। तो इसी प्रकार जब तक किसी की पहचान या परिचय या कुछ इंफॉर्मेशन जब तक नहीं मिली है, तब तक मन वहां नहीं जाता है। तो इसीलिए ईश्वर कौन था, मैं कौन हूं, पता ही नहीं था। अब आत्मा की भी पहचान मिली, परमात्मा की भी पहचान मिली। फिर दूसरा कदम है, पहचान तक ही केवल सीमित नहीं होता है, कई बार हम और पूछते हैं, और आगे पूछते हैं, कौन से गांव में पैदा हुए, कौन से स्कूल में गए, कहाँ क्या किया, और समझो वो पहचान होते होते कोई संबंध निकल आया, कोई दूर का रिलेशनशिप निकल आया, तो मन उसमें और चला जाएगा। अरे आप वही हो क्या, तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, आप वही हो, एक भाषा वाले मिल गए आपस में, कितनी खुशी से बातें करते, एक देश वाले विदेश में जाते, एक ही देश के आपस में मिले, कितनी खुशी होती है, यानी संबंध जैसे बन गया। फिर संबंध के बाद तीसरा आधार है प्रेम, जहां प्रेम होता है वहीं मन जाता है, और चौथा आधार है प्राप्ति, जहां से प्राप्ति होती है वहां से तो मन हटाते ही नहीं है, वो मन उसमें लगा ही रहता है।
Oh,
तो अभी हम ये चारों आधार परमात्मा से लगाएंगे। आत्मा और परमात्मा की पहचान, ये पहला आधार। फिर दूसरा है आत्मा का परमात्मा से संबंध, और तीसरा है आत्मा का परमात्मा से प्रेम, और चौथा है आत्मा का परमात्मा से प्राप्ति। तो अब ये चारों जब आधार समझ लिया, अब पहले आत्मा का चिंतन करेंगे हम। कैसे चिंतन करेंगे? आत्मा क्या है? एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ सितारा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा को अपनी पहचान मिलती है, तो उसका चिंतन करना है। ये मन के शुद्धिकरण का एक तरीका है। फिर आत्मा का की एड्रेस कौन सी है? तो दो एड्रेस है। आप परिचय पत्र में दो एड्रेस भरते ना, एक एड्रेस है आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस है, और दूसरी होती है परमानेंट एड्रेस। तो आत्मा की प्रेजेंट एड्रेस ये भृकुटी है। तो क्या समझना है? मैं आत्मा भृकुटी में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। फिर आत्मा की परमानेंट एड्रेस तो परम धाम है। फिर मन बुद्धि से परम धाम चले जाते हैं, और उस परम धाम में, उस अखंड ज्योति महतत्व में खुद को एक ज्योति स्वरूप आत्मा निश्चय करते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। लोग प्रश्न करते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए? भगवान ने ये दुनिया क्यों रची? हमको क्यों भेजा इस संसार में? तो उसका भी उत्तर बहुत सहज है कि आत्मा एक एक्टर है, और एक्टर होने के कारण उसके अंदर एक वो पार्ट भरा हुआ है। अब वो पार्ट कैसे बजाए जब तक वो शरीर में ना आए? शरीर उसका वस्त्र है, और ये सृष्टि एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर, एक स्टेज पर आत्मा रूपी एक्टर पार्ट बजाने आती है, वस्त्र देह रूपी धारण करके। इसलिए शेक्सपियर ने भी यही कहा, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो हर एक आत्मा के अंदर उसका रोल फिक्स है। तो रोल तो अनेक बजाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी हमारी एक ही, वो अलग है। एक एक्टर की आइडेंटिटी वही होती है, फिर रोल कितने भी बजाए, कितने भी फिल्मों में पार्ट बजाए, पर आइडेंटिटी थोड़ी बदलती, उसका जो वास्तविक परिचय वो तो बदलता नहीं है ना। इसीलिए आत्मा को जैसे पहचाना, फिर परमात्मा की हमें पहचान मिली। कौन है परमात्मा? वो ज्योति स्वरूप है, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वो निराकार है, और वो सर्व गुणों का सागर है, शांति प्रेम आनंद सुख सबका सागर है। और मैं आत्मा उनकी संतान, उन गुणों की स्वरूप हूं। इसीलिए जैसे ये चिंतन करते जाते हैं, मन परमात्मा में लगने लगता है। फिर मैं आत्मा परम धाम की वासी हूं, तो परमात्मा भी उसी धाम का वासी है। हम एक ही घर के रहने वाले हैं, एक जैसा ही स्वरूप है, एक ही घर है, एक जैसे ही गुण है। लेकिन आत्मा के जो वो गुण वही है जो परमात्मा के गुण है। इसीलिए कई समझते आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश क्यों समझते हैं? क्योंकि गुण वही है। लेकिन आत्मा अपने गुणों को भूल जाती है, देह में आकर के, जन्म मरण के चक्र में आकर के भूल जाती है। परमात्मा तो सदा ही अभूल है, वो कभी नहीं भूलता, मैं शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। आत्मा भूल जाती है। अब भूल गई तो किसको याद करती है? उस शांति के सागर को याद करती है वापस लेने लिए। तो हम आत्मा परमात्मा से शांति मांगेंगी नहीं, हे प्रभु शांति दो, ये मांगेंगी नहीं। लेकिन क्या अनुभव करेंगे? क्योंकि गुण मांगे नहीं जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज कैनॉट बी आस्ट फॉर, वैल्यूज कैनॉट बी टॉट, बट दे आर कॉट। हाँ उनको पकड़ा जाता है। अभी जो हम किसी में कोई अच्छे गुण देखते हैं, कहते आप में कितना अच्छा गुण है, मैं भी ऐसे बनूंगा, तो वो दे आर कॉट माना उनसे प्रेरणा ली जाती है। बच्चे माँ बाप को देखते हैं, अगर माँ बाप अच्छे सभ्य है और आपस में सबका प्रेम है तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। अब माँ बाप ही आपस में लड़ेंगे तो बच्चे भी वही सीख लेते हैं, जो बड़े करते वो छोटे सीख लेते हैं। तो इसीलिए वो वैल्यूज अगर हमारे अंदर है तो वो हम उतने वैल्यूबल बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है इफ समवन हैज नो वैल्यूज देन ही इज ऑफ नो वैल्यू। सो वैल्यूज कैसे आएंगे, जब आत्मा को पहचानेंगे, क्योंकि वो गुण आत्मा में है। तो इसीलिए आत्मा को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, उनके कर्तव्यों को भी पहचानना है, वो कैसे स्थापना पालना विनाश करते, ये सब बातें जब हम समझते हैं ना तो फिर इसका मनन चिंतन करते हैं। और मनन चिंतन जैसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। अब परिचय तो मिल गया, मन को थोड़ा स्वच्छ किया, लेकिन फिर संबंध जोड़े कैसे। जैसे हम रेडियो ऑन करते हैं, अब हमें कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो रेडियो ऑन करने से रेडियो स्टेशन नहीं मिलेगी वो, लेकिन जो रेडियो स्टेशन चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसका वेवलेंथ कौन सा है, मीटर बैंड कौन सा है, क्योंकि मीटर बैंड भी अलग है, तो वो जब मालूम हो तो सुई वहीं रखेंगे और वो रेडियो स्टेशन चाहे हजारों मील दूर होगा, हमारा रेडियो रिसीवर उसको कैच करेगा, वही फ्रीक्वेंसी हमारी इस रेडियो रिसीवर में आएगी। अब आत्मा और परमात्मा के बीच में भी बहुत सिमिलैरिटी है। पहली सिमिलैरिटी क्या है, एक जैसा स्वरूप है। ऐसे नहीं मैं फलाना देह हूं और परमात्मा निराकार है, न नाम है न रूप है, नहीं, आत्मा का भी वही रूप है, परमात्मा का भी वही रूप है, ज्योति स्वरूप, एक जैसा स्वरूप है। फिर एक जैसा धाम है, बच्चे की एड्रेस और पिता की एड्रेस एक ही होती है, अलग घर नहीं होता है, बच्चा पिता के पास ही रहता है, तो आत्मा भी उसी परम धाम की रहवासी है, वो मेरा भी घर है जैसे पिता परमात्मा का घर है, तो एक जैसे एक ही एड्रेस है। और तीसरी समानता, एक जैसे गुण है, लेकिन अंश क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गुण अंश रूप में है, वो तो सागर है, आत्मा उसका स्वरूप है, परंतु आत्मा भूल जाती है फिर उस परमात्मा को याद करती है। तो जब ये समानता को समझते हैं तो हम परमात्मा में मन लगाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे हे प्रभु मैं तो बहुत दुखी हूँ मुझे सुख दो, हे प्रभु मैं बहुत अशांत हूँ मुझे शांति दो, नहीं, गुण मांगे नहीं जाते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, शिव बाबा आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, इट्स एन अवेयरनेस, जो आपके अंदर ही है शांति उसको आप जागृत करो, वो जो सोई हुई शक्ति है उसको आप जगाते हो। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपको शांति चाहिए खुशी चाहिए सब आपके अंदर है, अंदर जाओ, अंदर में मिलेगा, अंतर अंदर में पहचानो। तो अंदर किसके, शरीर के अंदर तो नहीं है ना शांति और शक्ति, आत्मा की चीज है ये। तो जब मैं ये समझती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो पहला कदम इस राजयोग में है आत्मा परमात्मा का चिंतन, जिससे मन का शुद्धिकरण भी होता है, क्योंकि बहुत ऊंची सोच है ये। फिर दूसरा कदम है परमात्मा से रू रिहान, उनसे बातें करना, भगवान से बातें करना, लेकिन क्या बातें करना, मांगना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कई कहते हम वस्तु तो नहीं मांगते भगवान से, लेकिन गुण मांगते हैं, हम कहते गुण भी मांगने की चीज नहीं है, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब शक्ति ऐसे मांगेंगे तो शक्ति आएगी क्या? हम तो देह में फंसे हुए हैं, मानो जैसे दरवाजे बंद करके बैठे हैं और सोचते हैं हे सूरज तुम आ जाओ हमारे कमरे में, हमको रोशनी दो, और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखे हैं तो कैसे रोशनी देगा, वो तो दे रहा है। तो गुण कोई मांगने की चीज नहीं है, लेकिन खिड़की दरवाजे खोलो तो सूरज की रोशनी आपको आएगी ना। तो ये अंतर के पट खोलो ऐसे कहते ना, माना इस देह अभिमान को छोड़ो, आप एक आत्मा हो ये निश्चय करो। तो परमात्मा को जब हम याद करते, उनसे बातें करते हैं, तब कहते कोई भी वस्तु मत मांगो, कोई वस्तु मत मांगो। वैसे भी कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं मांगा और मिल गया, कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य में नहीं है तो भगवान भी क्या देगा, कैसे देगा। इसीलिए कभी कुछ मांगो नहीं, पर उसकी बजाय क्या कहो शिव बाबा को, आप कहो शिव बाबा आपने बहुत दिया है, थैंक्स। दुनिया में इतने लोग हैं जिनको ये भी नहीं है जो हम लोगों को है, इतने भी है ना। तो इसीलिए जो है उसमें संतुष्ट रह करके ईश्वर को थैंक्स दो। अब जो थैंक्स करते हैं भगवान को, धन्यवाद करते हैं जो उनके पास है उसका, क्योंकि देने वाला वही है, वही देता है ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तो ईश्वर का है सब कुछ। मेरा क्या, आत्मा आई तो कुछ भी नहीं लिया इस दुनिया में, सब कुछ यहाँ ही मिला उसको। तो जो हर वक्त ईश्वर को धन्यवाद करते हैं वो हाथ उठाएं, सचमुच सचमुच कुछ मांगते नहीं है, या मांगते भी हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं कभी मांगो नहीं, बहुत कुछ दिया है शिव बाबा ने। अंतर में आत्मा इतनी संतुष्ट रहे और उसी खुशी में रहे कि कितने हैं जिनको ये भी नहीं है जो हमको नसीब है। इसीलिए अगर कोई चीज चलो चली भी गई तो भी बाबा कहते उसका दुख मत करो, चलो कोई बात नहीं, इतना ही था। फिर कई फिर कहते हैं कि अच्छा हम वस्तु नहीं मांगते तो गुण मांगते, अभी गुण भी मांगने की चीज नहीं है, वो तो अधिकार से प्राप्त करने की चीज है। वो शांति का सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांत स्वरूप आत्मा उस शांति के सागर में समा जाऊं, बस। अशांत होंगे तो शांति के सागर में समा नहीं सकेंगे, शांत स्वरूप समझेंगे तब शांति के सागर में समा सकेंगे। सिमिलैरिटी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। इसीलिए न कुछ वस्तु मांगो न कोई गुण मांगो। फिर कई कहते ठीक है मैं भगवान से कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन हमने इतने जीवन में पाप किए हैं, वो पाप की का प्रायश्चित तो करूं या भगवान से माफी तो मांगू। तो कई सारा दिन भगवान से माफी मांगते, भगवान मेरे पापों को मत देखो, देखो मेरे भूलों को मत देखो, मुझे माफ कर दो, बस यही करते रहते। लेकिन माफ तो चलो करे भगवान, फिर भूले वही करते रहते, वापस वही भूले करते। माफ तो तब करे जब वो भूल वापस फिर ना करो ना। एक छोटा बच्चा होता है ना, कोई ऐसी बात कर दी जो मम्मी को पसंद नहीं है, तो मम्मी ने कहा क्यों किया, सॉरी मम्मी सॉरी, और हर वक्त वही बात करे और हर वक्त सॉरी सॉरी करे, तो माँ थोड़ी खुश होगी, हाँ बेटा सॉरी तो कर रहा है ना। तो माँ कहेगी तुम सुधरोगे कब, खाली सॉरी सॉरी करते रहते हो। तो भगवान भी हमें ये कहते ना, सुधरोगे कब, केवल हे भगवान मेरे मेरी भूलों को मत देखो, मुझे क्षमा कर दो। तो जो किया है उसका प्रायश्चित जरूर करो, लेकिन फिर प्रतिज्ञा भी करो कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। और अगर अंदर में ये दृढ़ संकल्प करेंगे ये भूल फिर नहीं करूंगा, हिम्मत रखी तो भगवान की मदद अवश्य मिलेगी। आप एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाओ, भगवान के 100 कदम मदद के आपको मिलेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि मदद न मिले, फिर दोबारा वो भूल न करने के लिए। लेकिन पहले तो प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो, ये फिर मैं भूल नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अनुभव जब अंदर में आता है ना, तब शक्ति का अनुभव होता है। तो इसीलिए राजयोग में ये चार अवस्थाएं हैं, पहले आत्मा परमात्मा का चिंतन, फिर परमात्मा से अंदर ही अंदर रूरिहान बातें करो, भगवान से धन्यवाद करो, गुणों का अधिकार प्राप्त करो और प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो ईश्वर से कि ये फिर भूल नहीं होगी, क्योंकि सब उनका ही है ना। आरती में हम लोग गाते भी है ना, जब कहते ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आरती में तो कह दिया सब ईश्वर तेरा है, फिर जब आरती पूरी हो ये मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा मेरा करते रहते हैं। फिर आरती में और भी वाक्य आते हैं, कौन से ऐसे वाक्य आते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो हम कहते हे भगवान मेरे विषय विकार मिटाओ, मेरे पाप हरो। अब भगवान विषय विकार मिटाए और पाप हरे मानो, लेकिन हम करते रहे। फिर हम ये कहते कि ये विषय विकार कैसे मिटेंगे, तो नेचुरल चीज है ये, काम विकार भी नेचुरल है, क्रोध भी नेचुरल है, लोभ भी नेचुरल है। फिर भगवान को कहते क्यों कि ये मिटाओ, फिर कहो ही नहीं, आरती से ये वाक्य निकाल दो। फिर कहेंगे पाप हरो देवा, तो भगवान पाप हरे और हम पाप करते रहे, विकारों में फंसते रहे और वो हरता रहे। यही काम दिया है क्या भगवान को, कि हम भी कोई ऐसा कर्म न करें जो हमारा सिर भगवान के आगे नीचे हो जाए, क्रिमिनल के रूप में न जाएं, एक मुजरिम न बने, लेकिन भगवान के आगे हम अपना सीना तान के खड़े रहे कि हम उनके इतने योग्य बच्चे हैं। तो इसीलिए ये चार अवस्थाएं हमें समझनी होगी। और फिर तो पहले आत्मा परमात्मा का चिंतन किया, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर परमात्मा से रूरिहान की, सब संबंधों से रूरिहान। वो हमारा हमारी माँ है, पिता है, बंधु है, सखा है, साथी है, साजन है। भगवान को बच्चा भी बना सकते हैं। मान लो आपको बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भगवान को बच्चा बना लो। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बना लिया, क्या बड़ी बात है, तो भगवान को ही बना सकते हैं। इसीलिए कभी दुख नहीं करो, किसी भी बात में कोई दुख करने की जरूरत ही नहीं, वो भगवान को बना लो। माताएं कहती है श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, चलो नहीं मिला बच्चा तो श्री कृष्ण को ही बच्चा बना लो अपना, वो आपका बच्चा आपको बहुत सुख देगा। इसीलिए सब संबंध एक परमात्मा के साथ है। और जैसे मैंने ये सचमुच अपने अंदर अनुभव किया, आत्मा भय मुक्त हो जाएगी, सुरक्षा का अनुभव होगा, भगवान मेरे साथ है। और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हमको शक्ति मिलेगी, उनमें इतना आत्मविश्वास होगा, परमात्मा विश्वास होगा, जो कभी स्थिति डगमग नहीं होगी। और फिर हम अनुभव करते हैं कि कैसे मन एकदम एकाग्र हो जाता है, एकदम परमात्मा की याद में, वो सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति में, वो कैसे उससे हम वो अनुभव करने लगते हैं, उनसे किरणें लेते रहते हैं। और ये किरणें हमारे अनेक जन्मों के पापों को भस्म करते हैं। अनेक जन्मों के पाप जैसे सूरज की किरणें, आप एक कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कागज पर वो किरणें लगाएं, डालें, तो किरणें जो है सूरज की, वो कैसे एकाग्र होकर के कागज पर जब लगती है, तो सूरज का रिफ्लेक्शन उस कागज पर आता है, वो कागज इतना, उस रिफ्लेक्शन इतना स्ट्रांग होता है जो कागज जलने लगता है, क्योंकि एकाग्र किया। तो ये भी मन को उस परमात्मा ज्योति स्वरूप में ऐसे एकाग्र करते हैं और उनसे ऐसे शक्ति प्राप्त करके अपने पापों को नाश करते हैं, शुद्धिकरण का अनुभव होता है। और जैसे ये शुद्धिकरण का अनुभव हुआ तो वो अनुभव एक सेकंड के लिए भी हुआ ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं, आत्मा इतनी हल्की हो जाएगी जैसे सारा बोझ आपका उतर गया। ये मेडिटेशन से अनुभव होता है और आत्मा की जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। अब इस बैटरी को चार्ज करो तो चलो हम उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। कैसे अभ्यास करेंगे? सीधा बैठेंगे, अभ्यास कीजिए और अंदर में ये संकल्प कीजिए कि मैं आत्मा उस परमात्मा से मिलन मनाने जा रही हूँ, बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, उस ऊंचे से ऊंचे भगवान से मिलन मनाने जा रही हूँ। तो कितना नशा, कितनी खुशी और उनसे सर्व गुणों की प्राप्ति करने जा रही हूँ, इतनी शक्ति लेने जा रही हूँ। तो जो प्राप्ति है उसका भी, उसकी भी खुशी होती है और जो संबंध से जो हमें रक्षा में होती है, मिलती है, सुरक्षा मिलती है, उसका जो आत्मा में बल भरता है उससे भी हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती जाती है और आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाती है। तो चलिए सीधा बैठेंगे, हाँ सीधा बैठें और अंतर में बहुत खुशी लाएं और नशा चढ़ाएं। मैं कौन और मेरा कौन, मैं किसका बच्चा हूँ, किसकी संतान हूँ, मैं उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान हूँ। और ये लाल लाइट क्यों जलाते हैं? ताकि हमें ये अनुभव हो कि जैसे मैं आत्मा उस परम धाम में हूँ, अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा परमात्मा के सामने हूँ, सम्मुख हूँ। वो शांति का सागर है, उस शांति के सागर से मैं आत्मा किरणें लेकर शांति की अपने अंदर समा रही हूँ। वो प्रेम का सागर है, मैं आत्मा वो प्रेम की किरणें लेके खुद को प्रेम स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। वो गुण अधिकार से प्राप्त करो। तो चलिए सीधा बैठेंगे, अपने आप से पूछिए मैं कौन हूं, आत्मा स्वयं ही उत्तर देगी, मैं एक ज्योति हूं। प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं, भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूं। अपना ध्यान मस्तक पर ले आए और महसूस करें कि ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, मैं इसका मालिक हूं। ये तो परिवर्तनशील है, विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी हूं, अपरिवर्तनशील हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। प्रकाश स्वरूप हूं, एक दिव्य ज्योति हूं। अब मन और बुद्धि के द्वारा पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति के महतत्व में वो शांति धाम में पहुंच जाए, जहां सुनहरा लाल प्रकाश इस ब्रह्म महतत्व में चारों ओर विराजमान है। और अनंत शांति ही शांति है, असीम प्रकाश, असीम शांति। मैं आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूं, उस शांति के सागर पिता की मैं संतान हूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। और शांति की शक्ति का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा, आपसे मेरे सर्व संबंध है, आप ही मेरे मात पिता, बंधु सखा, स्वामी सतगुरु हो। आपसे सब संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई, धन्य। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया। धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद। करते ही मन तृप्त हो जाता है, एकदम भरपूर हो जाता है। और शक्ति का संचार होता है, मन हल्का हो जाता है। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन। कितनी निरसंकल्पता, सर्व आकर्षणों से परे एक परमात्मा का ही आकर्षण है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है। वो शांति का सागर है। शिव बाबा, आपको पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई, आपको पहचान लिया है। आप सर्वशक्तिमान हो, मैं आत्मा आपकी संतान शक्ति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। अब इसी शक्ति को स्वयं में समाकर वापस लौटे इस आवाज की दुनिया में और उसी शक्ति से हर कार्य करे तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होगा, सार्थक होगा और सफल होगा। ओम शांति शांति शांति।